आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है और हम कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 हम उस पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने उस पर चर्चा की थी और आज हम उसी चैप्टर पर, उसी अध्याय पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो चैप्टर था भारतीय संविधान में अधिकार। ये जो अध्याय है ये हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में बताता है। और थोड़ा सा पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा था। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और उसमें जो भी प्रत्येक मौलिक अधिकार है उसके प्रयोग की जो भी सीमा है उसका भी उल्लेख किया गया है। सरकार का काम है वो व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान करे, पर अगर सरकार ये नहीं करती है तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। जब संविधान में अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाता है वही होता है हमारे अधिकारों का घोषणा पत्र। उसके बाद हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा कि हमें हमारे संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल हमने खास तौर पे जो पहला हमारा अधिकार है समता का अधिकार उसकी व्याख्या हमने पढ़ी, उसको डिटेल में समझा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या मुख्य पॉइंट्स थे। पहला था कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। रोजगार में अवसर की समानता। फिर था छुआछूत का अंत और आखिर में हमने पढ़ा था उपाधियों का अंत। सिर्फ सेना और शिक्षा के जो लोग हैं वो अपनी उपाधि लगा सकते हैं, बाकी जगह उपाधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आज हम आगे के अपने अधिकारों को समझेंगे, उनकी व्याख्या को देखेंगे कि हमारी किताब में क्या दिया गया है। तो आप अपनी किताब फिर से अपने सामने रखेंगे और आज जो हम पहला अधिकार जिसको समझेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या को जाने उससे पहले स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं पहले थोड़ा सा उसको आप सुन लीजिए, तो आगे जाके आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि हम किन अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसमें जो अधिकार आते हैं वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार है, संगठित होने का अधिकार है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है और कोई भी पेशा चुनने का, व्यापार करने का आपको अधिकार प्राप्त है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये एक व्यक्ति, एक जो आम नागरिक है उसको ये स्वतंत्रता है। तो पहला अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपने कुछ अपराध किया है तो जब तक आपका अपराध, आप दोषी नहीं सिद्ध हो जाते तब तक सरकार और संविधान आपको कुछ संरक्षण प्रदान करती है। उसके बाद है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, ये एक नया कानून जोड़ा गया था बाद में। और आखिर में अभियुक्तों और सजाए पाए जाने वाले लोगों के लिए भी अधिकार है। जो अभियुक्त जिन पर केस चल रहा है उन लोगों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये सब हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आपने किताब खोल ली होगी तो अब आप क्या करेंगे कि आप पेज नंबर जो पृष्ठ 34 है 34 उस पर आप आएंगे। यहीं पर हमारे को दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो भी कोई भी देश है वहां पर समता यानी बराबरी और स्वतंत्रता मतलब आजादी एक किसी भी लोकतांत्रिक देश की ये नींव होते हैं। अगर व्यक्ति को उस देश में बराबरी और स्वतंत्रता ना मिले तो उस देश का लोकतांत्रिक होना जीरो हो जाता है, और ये जो समता है और स्वतंत्रता वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप किसी को स्वतंत्रता दें और उसको अन्य लोगों के संग बराबर ना बैठाएं तो स्वतंत्रता का क्या उपयोग है। वैसे ही आप किसी को सबको कहें आप बराबर हैं, बराबर तो हैं, पर मैं कुछ कार्य करना चाहता हूं उसके लिए मैं स्वतंत्र ही नहीं हूं, तो मेरा वो जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब बात आती है कि स्वतंत्रता क्या है। हमने कहा स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये जो स्वतंत्रता क्या चीज है, ये जो स्वतंत्रता है वो है चिंतन की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब आप जो सोचते हैं आप उसको बोल सके बिना डरे, और कार्य करने की आप जो काम करना चाहते हैं आप स्वतंत्र हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मनचाहा कुछ भी करने लगे, है ना। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहता है कि आप कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सड़क पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी से और ट्रैफिक लाइट में लाल निशान लगा हुआ है, रेड लाइट हो रखी है, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं तो उस रेड लाइट को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, आपको नियमों का पालन करना है। तो इसमें ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, कानून व्यवस्था को बिना ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। मतलब आपको अगर अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो आपको दूसरों की भी स्वतंत्रता की इज्जत करनी पड़ेगी, और जो देश की कानून व्यवस्था है उसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। अब हम आगे बढ़ेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से है जीवन का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आप किसी भी नागरिक को, कोई भी आपका जो नागरिक है उसको इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। अगर आपने उसको जीवन ही नहीं दिया तो वो तो मानव रह ही नहीं गया, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है हमारे संविधान में कि आप पहली बात तो बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर आपने इसको गिरफ्तार कर भी लिया कि आपको लगा ये इसने कुछ गलत काम किया है, आपने इसको गिरफ्तार कर भी लिया तो उस व्यक्ति को वकील प्रोवाइड कराना आपका काम है। उसको जो भी वकील चाहिए वो उसको मिलता है, और जिस पर आपने केस किया है, जिसको गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसे न्यायाधीश जो जज होते हैं उनके सामने पेश करना है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। तो ये स्वतंत्रता है आपकी, ठीक है। तो यहां पर जो स्वतंत्रता का दायरा है वो और भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा उसने इस निर्णय को काफी अनेक रूप प्रदान किए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। इस जो स्वतंत्रता का अधिकार है वहां पर जो जीवन का अधिकार है उसके अंदर ही जीवन का अधिकार है, उसमें व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार है। आजीविका मतलब आप कुछ काम कर सकें, आप कुछ कमा सकें, वो भी स्वतंत्रता में ही आएगा। क्योंकि अगर आपके पास कुछ कमाने खाने के साधन नहीं है, जीवन चलाने के साधन नहीं है, तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। इसीलिए ये सब कुछ हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे निवारक नजरबंदी। क्या होता है कि आप देखते हैं जब किसी ने कुछ गलत काम किया उसे गिरफ्तार करते हैं, वो अपराधी साबित होता है तो उसे सजा मिलती है, अन्यथा वो छूट जाता है। पर कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो अपवाद होते हैं। क्या होता है, कभी कभी जो हमारी सरकार है या पुलिस है उसे लगता है ये आदमी कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट मिलती है कि कुछ गलत काम करने वाला है, ये कोई गैर कानूनी काम करने वाला है, और एक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को पहले से ही पकड़कर जेल में भेज सकते हैं, और इसी को कहते हैं निवारक नजरबंदी। मतलब इस नजरबंदी की जरूरत थी, और क्योंकि इसलिए जरूरत है क्योंकि ये व्यक्ति हमारे देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रावधान है स्वतंत्रता का कि जो ये निवारक नजरबंदी है वो अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। मतलब 3 महीने तक आप किसी को पकड़ सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, परंतु उसके बाद उस व्यक्ति को आपको एक बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड होता है, उसके सामने पेश करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपने इसमें ऐसा क्या देखा, इसने क्या गलत किया जो आपने इसको जेल में डाला है। तो जो सरकार कहती है वो तो यही कहती है कि ये जो निवारक नजरबंदी है वो असामाजिक तत्वों से या फिर जो हमारे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको उन पे लगाम लगाने का एक जरिया है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो इस कानून के लिए ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि जो निवारक नजरबंदी है उसमें कुछ ढील मिल सके। परंतु यही बात है कि वास्तव में जो ये जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और निवारक नजरबंदी, ये दो चीजें अलग अलग हैं, इनके जो प्रावधान है वो आपस में विरोधाभास है। इन दोनों में एक बात तो जो स्वतंत्रता है वो कहती है फ्री कर दो, और ये निवारक नजरबंदी क्या कहती है, इसको जेल में डाल दो, है ना, तो इसकी स्वतंत्रता ले लो। तो ये दोनों में आपस में थोड़ा सा विरोधाभास है, पर हमें देश की शांति, सुरक्षा और व्यवस्था हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए, और इसी के तहत ये कार्य किया जाता है। मैंने शुरू में आपको काफी सारे हमारे, मैंने स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या क्या पक्ष आते हैं वो तो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसके अंतर्गत थोड़े और भी अधिकार हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के अंतर्गत जितने भी अधिकार हैं उस पर कुछ ना कुछ सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आपको ध्यान रखना है ये निरंकुश नहीं है कि आप अपनी मनमानी ही करते जाएं, ऐसा नहीं है। जैसे पहले हमने कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबसे पहले हमने पढ़ा था, और अगर इस पर तब प्रतिबंध लग सकता है जब ये कानूनी व्यवस्था, शांति या नैतिकता देश की उसको खराब करने की कोशिश करे। जैसे सरकार को लगे कि ये व्यक्ति जो भाषण देने वाला है उससे समाज में लड़ाई हो सकती है या फिर आक्रोश आ सकता है, तो वो उसके भाषण को रोक सकते हैं। वैसा ही सभा और सम्मेलन के लिए भी किया जा सकता है। आप स्वतंत्र हैं, आप देखते ना कितनी सभाएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं, क्योंकि वो सब राष्ट्र हित में है, शांति बनाए रखे हैं, तो ये सबको सरकार अलाउ करती है। परंतु अगर ये जितनी सभाएं हैं, सम्मेलन देश की शांति पे अगर खतरा बन जाए तो सरकार इनको प्रतिबंधित कर सकती है, और सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। पर फिर वही बात होती है कि लोग कुछ कहते हैं कि प्रशासन इसका दुरुपयोग करता है, पर और ये भी कहते हैं कि वो जान करके ऐसा करते हैं, पर अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, पर ज्यादातर जब सरकार को लगता है सुरक्षा के लिए खतरा है वो तभी इसके कदम उठाते हैं। और जो सरकार है ये किसी के कार्य या नीति जो भी है वो जनता के विरुद्ध नहीं होती है, उनको भी पता है जनता का अधिकार है, लेकिन जनता अगर कुछ गलत कार्य में सरकार को लगता लिप्त हो रही है तभी वो प्रतिबंध लगाया जाता है। और ये जो सरकार के दुरुपयोग की बात है, ये बात संविधान सभा में भी उठी थी, जब संविधान सभा हमारी इस अधिकारों का निर्णय ले रही थी, बना रही थी, और जब प्रतिबंध की बात की गई तो एक हमारे नेता थे सोमनाथ लाहिड़ी, तो उन्होंने कहा कि कुछ अधिकार कम दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ दिया गया है, तो उनका कहना था कि इससे फिर ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं जो जनता चाहती है, और उसके बाद जो हम ये एक उपबंध लगा देते हैं कि आप स्वतंत्र तो हैं पर आप ये नहीं कर सकते, आप समान तो हैं पर आप ये नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को इस पर आपत्ति थी, परंतु आखिर में जो हुआ है वो हमारे देश की भलाई के लिए ही हुआ है। अभी जो अधिकारों की बात हो रही है स्वतंत्रता के, उसमें आरोपी या अभियुक्त के अधिकार की भी बात होती है। हम पृष्ठ नंबर 36 पर हैं, है ना, तो ये आखिरी पैराग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पर। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं। क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि ये आरोपी है, इसने कुछ किया, पुलिस ने इसे पकड़ा, मतलब ये दोषी है। पर जब तक कोर्ट ना डिसाइड करे, न्यायालय ना बताए, हम कैसे किसी को दोषी कह सकते हैं? गलत है ना ये। तो हमारा जो संविधान है, जो जिन पे आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है ना, आरोप लगा है, उनको भी स्वयं को बचाने के अवसर देती है। तो न्यायालय में जो मुकदमे हो निष्पक्ष हो, ये ना हो कि एक की ही बात सुनी जाए, एक व्यक्ति की बात ना सुनी जाए, इसके लिए कुछ संविधान ने अधिकार दिए हैं। पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिले। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति ने मानिए कुछ मर्डर है या आगजनी है, जो भी किया है, एक ही बार उसकी सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि बार बार आप उसको पकड़कर उस पर सजा देते रहें। कि कोई भी कानून किसी भी कार्य की पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा, जहां अपराध किया है उसके बाद से ही उस पर केस चलेगा। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। मतलब कोई व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है ना, तो वो खुद बोले कि ये मैं खुद साबित करूं कि मैंने जुर्म किया, ये गलत है। आपको जो सामने वाली जो टीम है उसको ही बताना पड़ेगा कि ये इसने कार्य गलत किया है। तो आप किसी भी व्यक्ति से उसके खिलाफ आप नहीं लिखवा सकते कि मैंने जुर्म किया है, ऐसा मैंने किया है। आप उसको दबाव में नहीं ला सकते, उसको कानून साक्ष्य नहीं मानता है। तो अब आप ये समझ गए कि हमने क्या पढ़ा। अभी हमने स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ा, विभिन्न विभिन्न अधिकार हैं, शिक्षा का उसमें अधिकार है, उसमें स्वतंत्रता के अलग अलग हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ये बहुत सारे भिन्न भिन्न हमें अधिकार दिए गए हैं। अब हमने स्वतंत्रता के अधिकार को समझा, अब हम बात करेंगे अगले हमारे मौलिक अधिकार की, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, जब इसका पहला ऑडियो आपने सुना होगा, तभी हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की थी। याद है आपको, हमने दिल्ली का केस बताया था, एशियन खेलों का, वहां पर कैसे शोषण हो रहा था। तो इसी क्रम में हम अब शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे। जो हमारा देश है, यहाँ पे करोड़ों गरीब दलित वंचित लोग रहते हैं, है ना, और उनका बहुत शोषण होता है। शोषण मतलब उनसे जबरदस्ती काम करवाना, जो उनकी मजदूरी है उनको नहीं देना, उनसे एक घंटे का काम है तो उसको 10 घंटे करवाना, उनको अपना गुलाम बना के रखना, दास बनाकर रखना, एक तरीके से शोषण ये है। तो ऐसे शोषण को हम अपने देश में या तो बेगार कहते हैं या बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मतलब उसको अपना बंधक बना लेना, है ना। तो इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था पहले, अब तो नहीं होता, पर आजादी से पहले। तो इस प्रकार के शोषण पर संविधान ने प्रतिबंध लगाया है। जो जो पुराने जमाने में जो अमीर लोग होते थे, जमींदार, सूदखोर, जो भी अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे, गरीबों को अपना बंधुआ मजदूर बना लेते थे। तुम हमारा ये काम करोगे, अब हमें देना है हम पैसे देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। वो लोग गरीबी में मर जाते थे, खाना नहीं मिलता था, मतलब अत्यधिक ही उनका शोषण होता था, बहुत ज्यादा शोषण होता था। इसीलिए हमारे संविधान ने इस बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्यवाही की, और अब इसको क्या घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है, और ये कानून द्वारा दंडनीय है। दंडनीय मतलब अगर आपने किसी को बंधुआ मजदूर बनाया तो आपको दंड हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो ये जो हमारा शोषण का अधिकार है, उसमें पहली बात तो ये बंधुआ मजदूरी को इसने रोका। शोषण के अधिकार में एक और अधिकार है, वो है बाल श्रम को रोकने का। बाल श्रम, आप बाल मतलब बच्चे, श्रम मतलब कार्य। जो छोटे बच्चे हैं, 14 आयु जिनकी है उससे कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित आप नहीं कर सकते। मतलब आप किसी छोटे बच्चे से नहीं कह सकते कि जाके ये तगारी उठाओ, जाओ ये बिल्डिंग बनाओ। आप उन बच्चों से इस तरीके के कार्य नहीं करा सकते हैं, बहुत ही घृणित बात है। और साथ में बाल श्रम को ये भी कहा गया कि जो 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा का मौलिक अधिकार, मतलब जो 14 साल के बच्चे हैं उनको हम कहते हैं ना फ्री एजुकेशन है, तो ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि एक तो पहली बात आप बच्चों से बाल श्रम नहीं करा सकते, ठीक है, बाल श्रम नहीं करा सकते, और दूसरा आपको उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। तो ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में दो पॉइंट्स हैं, पहला बंधुआ मजदूरी के खिलाफ है, किसी को आप बेगार पे नहीं रख सकते, और दूसरा है आप बाल श्रम नहीं करा सकते। आपको अब ये क्लियर हो गए दो अधिकार। हमने अभी क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। जो हमारा देश है, हम सब जानते हैं विभिन्न विभिन्न धर्म इस देश में है, तो जो हमारा अपना संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, और इस स्वतंत्रता को, इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है। मतलब कई ऐसे देश हैं, बहुत से राजा हैं जो अपने अपने देश में जनता को कहते हैं कि आपको धर्म का पालन करने की फ्रीडम नहीं है, आप वही धर्म को फॉलो करेंगे जो हमारे देश में लागू है, या जो राजा का धर्म है उसी को आप फॉलो करेंगे। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, हम एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता हमेशा बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार की गई है। ये सबसे अहम बात है। ऐसा नहीं है कि आप गए और किसी से कहें कि आप अपना जो धर्म है उसको छोड़ दीजिए, नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। सबको अपना धर्म फॉलो करने का, पालन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी में है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका मतलब क्या हुआ, अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म चुन सकता है और ये भी निर्णय ले सकता है कि वो किस धर्म का पालन करेगा और किसका नहीं करेगा, मतलब वो उसके व्यक्ति पर डिपेंड करता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का ये भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का और उसका प्रचार प्रसार करने का भी हक है, परंतु उस पर कुछ प्रतिबंध है। जैसे आप धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके अधिकार ऐसा नहीं कि वो असीमित है, कुछ उसमें सीमाएं हैं। सरकार कभी कभी इसमें कभी कभी हस्तक्षेप कर सकती है जब उसको लगता है कि ये धार्मिक जो चीजें हैं वो समाज में बुराइयां ला रही हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा कि कुछ बाल विवाह है, मानव बलि है, जिसमें अच्छी चीजें नहीं है, तो सरकार इन पे प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो जिस धर्म पे प्रतिबंध लगता है, डेफिनेटली उनके रिश्ते सरकार से तनावपूर्ण हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे पर एक गलत काम कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर रोक लगा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, सरकार जो भी करेगी वो समाज के भले के लिए करेगी, है ना। तो कोई अगर बुराई है तो उसे तो हमें दूर करना चाहिए, ये तो सरकार का कार्य ही है। और एक और बात जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता पर ज्यादातर विवाद होता है वो है धर्म परिवर्तन। आप कई बार किससे पढ़ते होंगे, उस व्यक्ति ने ये धर्म अपना लिया, ये धर्म अपना लिया, तो जो हमारा संविधान है वो कहता है कि लालच या भय से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जबरदस्ती का जो धर्म परिवर्तन है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि हमें सिर्फ अपने धर्म की सूचनाएं प्रसारित करनी है, जिससे हम दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अरे मेरे धर्म में तो ये बहुत अच्छा है, मेरे धर्म में ये, आप बता सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगे तो वो धर्म अपना भी सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर आप उसको किसी को डराएं कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, या मैं उसको कुछ लालच दूं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम मेरे धर्म को अपना लो, ये हमारा संविधान नहीं हमें इसका राइट देता है। अब बात करेंगे सभी धर्मों की समानता, है ना। तो ये देश में हमने पढ़ा विभिन्न विभिन्न धर्म है, इसलिए सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करेगी, ये कहा गया है हमारे संविधान में। इसका यह अर्थ ये भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, है ना। तो जो कुछ देश होते हैं, आपने सुना होगा उनका एक राजकीय धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान में शायद इस्लाम उनका धर्म है, लेकिन हमारे देश भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी चुने जाते हैं वो अपने कैपेबिलिटी पे चुने जाते हैं, वो किसी धर्म पे नहीं चुने जाते, देखा है ना आपने। और यहाँ पे समानता का भी अधिकार हो जाता है। जैसे नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों की आप बात करते हैं, सरकारी नौकरियां आप देखते हैं, तो वहां पर भी जब ये नौकरियां निकलती हैं तो आपने देखा है क्या कि नहीं, आप इस धर्म के हो तो हम आपको लेंगे, आप इस धर्म के नहीं हो तो हम आपको नहीं लेंगे, इस तरीके की बात नहीं होती है। तो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, सरकार का कोई धर्म नहीं है, और सरकार द्वारा जो संचालित स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें किसी धर्म का आप प्रचार नहीं कर सकते, ना ही वहां कोई धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, और ना ही वहां पे आप किसी को धर्म के कारण प्रवेश दें और ना दें, इस पर भी आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष। क्या देश है हमारा? धर्म निरपेक्ष। जो भारत की प्रस्तावना उसमें लिखा है ना कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, मतलब हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, हम सबकी बराबर से हम इज्जत करते हैं, कोई धर्म ना बड़ा है ना हमारा छोटा है। अब हम आएंगे अगले मौलिक अधिकार पर, वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो हमारे देश में अल्पसंख्यकों को दिए गए। देखिये हमारे समाज में बहुत विविधता है ना, तो कुछ समुदाय ऐसे अल्पसंख्यक, मतलब उनके नंबर कम है, वो पॉपुलेशन में कम है, और बहुसंख्यक क्या है, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है। तो हमारा संविधान मानता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बनाए रखें, उनको जो भी उनका धर्म है, उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, उसके आधार पर वो जो समुदाय है वो अपनी भाषा, लिपि, धर्म उसकी सुरक्षा कर सकता है। तो अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? ये वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा होता है, धर्म होता है, और ये देश के या तो किसी एक भाग में रहते हैं या इनकी जनसंख्या इधर उधर बिखरी रहती है, पर वो ये जो समूह है छोटा होता है। और ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो अल्पसंख्यक समूह है वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये लोग खोल सकते हैं, सरकार नहीं खोल सकती, लेकिन जो अल्पसंख्यक समूह है उनको, क्योंकि खतरा रहता है कि कहीं उनका ये जो भी धर्म है, भाषा है, लिपि कहीं खत्म ना हो जाए, तो इसके लिए वो कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं जहां पर वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, और शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो शिक्षा संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो मतलब ये जो अनुदान मिलते हैं कभी कभी, थोड़ा सा कभी कभी सरकार भी इनके प्रचार प्रसार के लिए मदद करेगी, पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वही अपने इन संस्थानों को वो लोग संभालेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसमें हस्तक्षेप करने लगा। तो ये है हमारे अल्पसंख्यक जो हमारे समूह हैं उनको बचाने के लिए ये हमारा मौलिक अधिकार है, जिसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यक समूह के लिए है ना, आपको बेहद ध्यान रखनी है। अब हम आ रहे हैं अपने आखिरी और सबसे, मैंने शुरू में ही कहा था मूलभूत संवैधानिक में जिसको अधिकार कहा जाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप माने या ना माने सबसे आकर्षित करने वाला अधिकार है, क्योंकि देखिए आपको अधिकार तो दिया गया है, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए, पर ये ही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये बाकी अधिकारों की रक्षा करता है। जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने एक, आप जानते हैं उन्होंने इस अधिकार को क्या कहा था, उन्होंने कहा था संविधान का हृदय और आत्मा है, मतलब अगर इसको निकाल दिया गया तो सारे मौलिक अधिकार जीरो हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश भी दे सकते हैं। जी हाँ, ये जो अधिकार है वो हमको कहता है कि जैसे मेरा किसी ने कोई अधिकार, मेरे जीवन का अधिकार छीनने की कोशिश की, तो मैं, मुझे कहीं कुछ नहीं लिखना, मैं सीधे कोर्ट जा सकती हूँ, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती हूँ, मैं वहां बता सकती हूँ कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। और तब जो न्यायालय है वो सरकार को आदेश और निर्देश देता है कि इनके जो अधिकार है उनकी रक्षा की जाए। तो जो हमारा न्यायालय है वो कई प्रकार के आदेश जारी करता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं, तो ये जो न्यायालय आदेश जारी करता है उसको हम प्रादेश या रिट कहते हैं। आप समझ गए, प्रादेश या रिट क्या हुआ, न्यायालय जो आदेश जारी करता है कि इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए, मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उसके लिए कुछ आदेश आते हैं। ये कुछ आदेश हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रादेश या रिट कहते हैं ना। कोर्ट में उसने रिट लगाई है, रिट दायर की है। रिट दायर करना मतलब आपको जब लगता है हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो रिट है ये 5 तरीके की होती है, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि अगर न्यायालय को पता चले कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी है गैर कानूनी है या असंतोषजनक है, तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, कह सकता है मुझे गलत तरीके से पकड़ा है, और न्यायालय को लगे कि ये गलत है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। तो इसे क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है परमादेश, दूसरी रिट को कहते हैं परमादेश। यह तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगे, कोर्ट को, कि कोई जो सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या सेमी गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, जो भी है, वो अपने उसको जो दायित्व दिए गए हैं कानून ने या संविधान ने, उन दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो वो जो आदेश जारी कर सकती है न्यायालय कि आप अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। मतलब कोई जो कोर्ट से आप पढ़ेंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे भी सिविल कोर्ट्स होती है, तो ये जो कोर्ट्स हैं इनको कहा गया कि भैया ये आपका कार्य नहीं है, परंतु वो कार्य में आदेश जारी करने लगे, मुकदमा चलाने लगे, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकती है। उसके बाद अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका हक नहीं है, तो जो हमारा न्यायालय है उसको उस पद से हटा सकता है, ठीक है। और आखिरी है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या कोई भी सरकारी व्यक्ति है, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है ना, उसको अधिकार नहीं है पर अगर वो कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष उस मामले को, जो विचाराधीन मामला है, उससे लेकर उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को दे सकता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर उसको कोर्ट को लगता है कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, इसको तुम्हें नहीं करना, ये तो ऊपर वाले व्यक्ति को करना था, तो वो कहेगी कि इसको आप मत कीजिए, ये आप अपने ऊपर इस कार्य को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जो थी, ये रिट है 5 तरीके की जो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती हैं। आप इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आप जब इनको आप समाचार सुनेंगे तो आप कई बार ये रिट के बहुत प्रयोग होता है कि आज उसने ये रिट लगा दी, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि ये कैसे हैं। पर कोर्ट तो है ही हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, साथ में कुछ सरकार ने आयोग भी बना रखे हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है। ये क्या करते हैं, ये अपने अपना जो विभाग है वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे अल्पसंख्यक आयोग है वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की रक्षा करता है, और जो अनुसूचित जाति आयोग है वो दलितों की अधिकार जो उनके दिए हुए हैं उसकी रक्षा करता है। एक और आयोग होता है जिसके बारे में मुझे लगता है हर दिन आप समाचार में सुनते होंगे, वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग मतलब ह्यूमन राइट कमीशन। ये जो है किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। तो ये जो मानव अधिकार आयोग है, जब इसको जनरली जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो गए होते हैं, या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, वो जो उनको अच्छा अनुभव है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये लोग देखते हैं कि क्या किसी मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, हमें कोई हक मिला है। जैसे जेल में जो खासकर बंदी हैं, है ना, आपने हमने लालूंग की कहानी पढ़ी थी, वहां पे उसको किसने छुड़वाया, आखिर में मानवाधिकार आयोग को पता चला कि इस पे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जो आयोग है इसको ये खास करके हमारे मानवीय संवेदनाओं को, हमारी ह्यूमन बीइंग का राइट्स होते हैं उसको ये बचाते हैं और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप इसके बारे में और भी, इनकी एक वेबसाइट है www.nhrc.nic.in, आप इसको कभी जब अगर आपको समय मिलता है तो आप इसे खोलकर पढ़िए और आपको इनके केसेस के बारे में पता चलेगा कि इन्होंने कितने अच्छे से काम किया है, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमने हमारे सारे अधिकार जो मौलिक अधिकार दिए हैं उन सबको अच्छी तरीके से मुझे लगता है हम समझ चुके हैं और अगले बार हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो तत्व हैं ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और तो फिर अब आज हम यहीं खत्म करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले थोड़ा सा हमारी समरी देखी थी कि हमने उससे पहले क्या सीखा, है ना, हमने पहले दिन समता के अधिकार को सीखा था। आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये अलग अलग अधिकार दिए हैं। फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा जो बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम को रोकता है। उसके बाद हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, आस्था और प्रार्थना की हमें आजादी है। फिर हमने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार पढ़े जो हमारे अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं भी बना सकते हैं, ये भी पढ़ा हमने। और आखिर में हमने क्या पढ़ा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार मौलिक अधिकारों को, बाकी जो अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, ये इस बात का हमको हक देता है। और साथ में हमने कुछ रिट भी पढ़ी कि वो रिट हमें कैसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कल हम फिर से पहले रिवाइज करेंगे और तब जाकर हम नीति निर्देशक तत्वों पर आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू एंड थैंक यू वेरी मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।